तफसीर देखते हैं आयत नंबर 62 से। एक दफ़ा पूरी आयत की हल्की सी वजाहत करके फिर इंशाअल्लाह ताला उसमें से हम कुछ बातें अमल की लेंगे। इन्नल लसीना आमनू वल लसीना हादू वन नसारा, बेशक जो लोग मुसलमान हुए और जो लोग यहूदी हुए और नसारा, वह साबीना और साबी, यहाँ एक छोटी सी ब्रैकेट लगा लें आगे से, यानी मन लफ्ज़ से पहले एक ब्रैकेट लगा लें। मन आमन बिल्लाही वल यौमिल आखिर व आमिला सालेहन, ये सालेहन के बाद ब्रैकेट को बंद कर दें। अगर इस आयत को सही तरह से हम समझ सकेंगे तो इंशाल्लाह इस चीज़ से आपको फ़ायदा होगा। जो कोई अल्लाह पर ईमान लाए और यौम आखिर पर ईमान लाए और अमल सालेह करे, फिर क्या होगा? फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, तो इनका अजर इनके रब के नज़दीक है। क्या? कि वला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर कोई खौफ होगा और ना वो गमज़दा होंगे। इस एक आयत में अल्लाह ताला ने सब इंसानों की खुश फहमियों को ख़त्म कर दिया। इत्तेफाक की बात कह लें या आदत की बात कह लें कि दुनिया में जितने भी मज़ाहिब आज तक आए और जितने भी आगे आएंगे, हर गिरोह का ये दावा ज़रूर रहा है कि हम जन्नत में जाएंगे। अगर यहूद को देखें तो उनका दावा तो कुरान पाक में मौजूद है, कहते थे कि लन तमस्सनन नार इल्ला अय्यामम मादूदा, हम आग में नहीं जाएंगे, हम अगर गए भी तो गिनती के चंद दिन। इसी तरह यहूद और नसारा दोनों के तकाबुल को अल्लाह ताला ने इसी सूरत बकरा पहले बारे ही में आप पढ़ेंगे कि यहूद का दावा क्या था, कि लन यदखुल अलजन्नत इल्ला मन काना हूदियन, जन्नत में कोई नहीं दाखिल होगा मगर यहूदी। और इसी तरह नसारा ने भी ये कहा था कि लन यदखुल अलजन्नत इल्ला मन काना नसरानिया, या नसरानी ना बन जाए। आज के दौर में देखा जाए तो मुसलमान भी यही दावा करते हैं कि जन्नत में जाना है तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। हिंदू धर्म की किसी किताब को खोल लें, उनके किसी मंदिर में जाके बैठ जाएं, अल्लाह ना करे अगर ऐसे जा रहे हैं सीखने के लिए, तो वो भी आपको यही कहेंगे कि अगर आपको जन्नत में जाना है तो आपको ये सारे काम भगवान की खुशी के लिए करने पड़ेंगे, जो सरासर शिरकी बातें भी होंगी फिर भी वो कहेंगे कि यही करनी पड़ेंगी। मुसलमानों के आज कम से कम 10-15 मारूफ फ़िरके मौजूद हैं। आप हर फिरके की जमात के पास बैठ जाएं और उनसे ज़रा दीन की कोई बात पूछें तो वो कहेंगे कि जो तरीका हमारा है ना, यही है जन्नत जाने का तरीका। और अल्लाह के नबी सल्लम की एक मारूफ रिवायत है जिसका खुलासा यह है कि यहूद के 71 फिरके हुए थे यानी 71, नसारा के 72 हुए थे 72, और उम्मते मुस्लिमा के 73 होंगे 73। और सबके दावे क्या हैं कि हम जन्नती हैं, हालांकि उनमें से 72 फिरके नारी होंगे, नार में जाने वाले, और एक फिरका फिरका नाजिया होगा, निजात पाने वाला। इस बात को सुन के सहाबे कराम, उनको तो फिक्र लग गई, फौरन बोले मन हुम या रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी वो कौन होंगे, यानी 73 में से एक बचेगा तो वो होंगे कौन? तो आपने फरमाया कि ये कौन होंगे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह वमा अना अलैही व असहाबीही, वो उस पे होंगे जिस पे मैं और मेरे सहाबा हैं, यानी एक मेयार दे दिया था। अब ये सारी तमहीद मैंने इस आयत की क्यों बांधी? इसलिए कि ये कुरान पाक की उन आयात में से है जिसको बहुत मिस इंटरप्रेट किया जाता है। मुसलमान तो मुसलमान हैं, दूसरे मजाहब वाले भी हमारे कलाम की इस आयत को इंटरप्रेट करते हैं और इससे एक अकीदा अखज़ करते हैं जिसको वहदत अदियान कहते हैं। सारे दीन एक ही हैं, यूनी रिलीजन। उस अकीदे का ख़ुलासा क्या है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना लाजिम नहीं है, कोई मान ले तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं। हकीकत में सारे मज़हब एक ही थे, सारे दीन दुनिया के एक हैं, क्रिश्चियनिटी हो, ज्यूइज़्म हो, यहूदी हो, तुम उसको अल्लाह कहते हो, हम गॉड कहते हैं, हिंदू उसको ईश्वर कहते हैं, कोई उसको ऊपर वाला कहता है, कोई कुछ कहता है, सब दीन एक है। बस करो क्या, کہ عمیلہ صالحن کام اچھے کرتے رہو، اور اسی بنیاد پہ پھر لوگ یہ عقیدہ گھڑتے ہیں کہ پھر ہر بندہ جنت میں جائے گا کیونکہ وہ اچھے عمل کرتا ہے. اور ایک دفعہ ہمیں ایک خط ملا ایک چرچ کی طرف سے، کسی مسیح کے ساتھ ہمارا کافی قریبی تعلق تھا الحمدللہ، اور ہے بھی امریکہ میں، تو مسجد کے ایڈریس پہ ایک چرچ کی طرف سے لیٹر آیا. میں نے اتفاق سے اس وقت پاس تھی، میں نے بھی پڑھا. اس میں انہوں نے ایگزیکٹلی یہی آیت اس کا ترجمہ لکھا ہوا، اور ہم مسلمز کو بہت اچھے طریقے سے ایڈریس کیا ہوا کہ آؤ تم کرسچین ہو، ہم مسلم ہیں، ہم مسلم اور کرسچین الگ الگ رہنے کے باوجود بھی ہم ایک ہی دین پہ ہیں، اور دیکھو تمہارا قرآن یہ اس چیز کی دلیل دیتا ہے. اور میں اس وقت اس بات سے حیران رہ گئی کہ کتنوں کو یہ خط گیا ہوگا، کوئی اس مسجد کو تھوڑی گیا تھا جس میں ہم تھے، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہوگا، پورے بروشر تھے چھپے ہوئے. تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، اگر میں نے یہ آیت پڑھی اور پڑھائی نہ ہوتی تو واقعی عام لوگ تو گھوم جاتے ہیں. اور آج دوسروں کو چھوڑ دیں، یہ دعویٰ یا یہ نعرہ کوئی نیا نہیں ہے، سب سے پہلے مسلمانوں کی یعنی برے صغیر پاک و ہند کی جو ہسٹری ہے اس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا شہنشاہ اکبر کے دور میں. اسی دور میں دین الہی کے نام پہ ایک دین معروف ہوا تھا جس کا دوسرا نام پہ دین اکبری بھی رکھا گیا، اور آج بھی ہمارے نصاب میں، مجھے آج کا نہیں پتہ لیکن جب میں نے پڑھا یا جس دور میں ہم پڑھتے تھے، ہسٹری کی کتابوں میں ان بادشاہوں کی کہانیاں اور ان کے واقعات ایک ہیرو بنا کے پیش کیے جاتے ہیں. اور واللہ ہی میں کہہ سکتی ہوں کہ جب تک میں نے قرآن پڑھنے کے بعد اس قانون کو نہیں پڑھا، دین اکبری کا نام میں نے سنا ہوا تھا اور میرے دل میں اس کے لیے کوئی بھی ایسی بات نہیں آتی تھی. آپ میں سے کسی نے سنا ہوا اس کا نام کہ یہ ایک دین الہی کے نام پہ شروع ہوا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا دعویٰ کیا تھا اس قانون کا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین آیا تھا وہ 1000 سال کے لیے تھا، اور اب وہ پورے ہو گئے. آج کل یہ 14th چل رہے ہیں نا، 15th صدی ہے، تو تب 1000 تھی. کہتے تھے 1000 سال پورا ہوا، اللہ کے نبی کی شریعت بس اس وقت تک کے لیے تھی. اب نیا الف ثانی، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا مجدد الف ثانی کا، الف کہتے ہیں 1000 کو، 1000 کو، ثانی کہتے ہیں دوسرا، سیکنڈ کہتے تھے. اب یہ دوسرا ایرا شروع ہوا ہے، اور اس میں میں ایک اپنی کلاس میں جو ہماری آر کے پی کی ہوتی ہے، سورہ مائدہ میں بھی ایک آیت آئی تھی، میں نے 5-6 صفحے پورے اس قانون کے جو اس کی مطلب باریکیاں تھی پڑھ کے سنائی تھی. اور آپ حیران رہ جائیں کہ اس میں شراب حلال ہو گئی، صلیب کو الگ کر دیا، یعنی اس سب کے اندر یہ کہہ دیا تھا، ایک نعرہ آپ نے سنا ہوگا کہ مسجد مندر رکھڑ و نور، کچھ اس طرح کی بات ہے کہ کسی کو مسجد کہہ لو کسی کو مندر کہہ لو، یہ سب ایک ہی نور کے سر چشمے ہیں. اس کے ذریعے اتنی تبدیلیاں پیدا کی گئیں کہ سب دین ایک ہیں اور کسی دوسرے کو ماننے کی ضرورت نہیں. اس کے مطابق اکبر اعظم اور مغل اعظم جو تھا وہ اپنے آپ کو بڑا کہتا تھا، اور اس کے ساتھ پھر آگے کیا کچھ ہوا. اور یہی آیات لوگوں کو مس انٹرپریٹ کراتی ہیں، تو لہٰذا اب ہم جب اس کی تفسیر سنیں گے تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ کہ اصل اس آیت کا مدعا کیا ہے پہلے آپ کو وہ بتاؤں گی، اور بالکل آسان لفظوں میں بتانا چاہوں گی تاکہ آپ اس سے پھر بات کو سمجھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، چار مشہور مذاہب کا نام لیا گیا. اور مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑی خوف کی بات ہے نا اس میں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کا نام یہاں دوسرے مذاہب کے ساتھ لے لیا. میں کہتی ہوں کہ اگر مسلمانوں کی خوش فہمیاں دور ہونی ہے نا تو اس ایک آیت کو پڑھ کے ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اپنا نام مسلمان رکھ لو، تم اپنا نام یہودی رکھ لو، تم اپنا نام نصرانی رکھ لو، تم اپنا نام صابی رکھ لو، صرف نام رکھنے سے تم جنت میں نہیں جاؤ گے. اچھا جنت میں جانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ من آمن باللہ، اللہ پہ ایمان لانا ہوگا، اور اللہ کے اوپر ایمان لانے کے سارے تقاضے بھی پورے کرنے پڑیں گے، اور والیوم الاخر، عقیدہ آخرت کو پختہ کرنا پڑے گا. جنت جہنم، اگر کسی نے سارے دین کو مانا اور جہنم کا انکار کر دیا تو بھی وہ گیا، جس نے کہا کہ مرنے کے بعد سب مٹی ہو جائیں گے وہ بھی گیا. یعنی عقیدہ آخرت وعمل صالحا، عمل صالح کرنے ہوں گے، پھر فلہم اجرہم عند ربہم. بات واضح ہوئی؟ اس آیت کا مدعا کیا ہے کہ کسی گروہ کے ساتھ اپنا نام لکھا لینے سے بندہ جنتی نہیں ہو جائے گا جب تک کہ وہ جنت میں جانے کے کام نہ کرے گا. جو کر لے گا ہاں ईमान वालों को भी खोल दिया। अब लफ्ज़ एक एक को देखे, ईमान वालों का नाम यहाँ क्यों लिया गया कि कल तक यहूद कहते थे कि हम अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं और हम जन्नत में ही जाएंगे, तो कहीं आज मुसलमान सिर्फ ये ना कह दें कि सिर्फ मुसलमान नाम रख लिया तो बस तभी जन्नत में चले जाओगे। क्या आज कुछ लोग ऐसे हैं सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं हाथ में कि हम मुसलमान हैं, हमें जन्नत में जाने से कौन रोकेगा? है कोई जो हमें रोके? याद रखिए कि जन्नत किसी का नस्ली वतन नहीं, ये आपका मेरा आबाई घर नहीं, मदरलैंड नहीं कि सारी ज़िंदगी बाहर रहें और बाद में जब बुढ़ापे में अपने मुल्क में जाके अपने मदरलैंड में रहना चाहें तो हमें कोई ना रोके। हम में से किसी के पास जन्नत का पासपोर्ट नहीं है कि हमें वीज़े की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान होने के बाद रास्ता आसान हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को मानना अब जन्नत में जाने की दलील है, मानना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जिसने ये सुन लिया कि मैं मोहम्मद दुनिया में आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वो मुझ पर ईमान ना लाया तो वो अपना ठिकाना आग समझे। अब आज आपके जहनों में एक सवाल होगा, उसका इंशाल्लाह इजाला या उसका जवाब हो सकता है कि लोग कहते हैं कि क्या यहूद और नसारा जन्नत में नहीं जाएंगे? बहुत कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन लोग करते हैं। इसका जवाब क्या कि जाएंगे। कौन से जाएंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले के दौर, अगर आप अपने बोर्ड पे दो हिस्से बना लें पेपर पे या जहाँ भी आप लिखें, दो हिस्सों में बांट लें यहूद और नसारा और बाकी सारे अदियान को। एक वो हैं जो नबी सल्लम के दुनिया में आने से पहले के दौर में गुजरे, ठीक है, और दूसरे आपकी आमद से लेकर क़यामत तक आने वाले हैं। बड़ा बेरोक टोक फैसला है कि वो लोग जो अल्लाह के नबी की आमद से पहले आए थे वो जाएंगे जन्नत में, कब? जब उन्होंने अपने दौर के दीन के तकाजे पूरे किए होंगे, अपने नबी को माना होगा, अपने नबी की तालीमात पे अमल किया होगा, शिर्क नहीं किया होगा, वो जाएंगे। हर दौर के लोगों में से जन्नती भी हैं जहन्नमी भी हैं, ठीक है। अब बात आ गई नबी सल्लम की आमद की। पिछले तमाम मज़ाहिब के अंदर एक शर्त थी उनकी किताबों में कि जब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में आ जाएगा, और सूरह मायदा में वो आयत आएगी, वहाँ मज़ीद तफसील से बात हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अभी तो सिर्फ जहन साजी की बात है कि जब भी ये नबी दुनिया में आ जाएगा तो तुम इस पहले दिन को छोड़ के उसके दिन को ले लेंगे। व तुअज़्ज़िरूहू व तुवक्किरूहू, ना सिर्फ ये कि उसका साथ दोगे बल्कि उसको इज्जत भी दोगे, वक़ार भी दोगे। और यहूद और नसारा की किताबों में यह है दिन से लिया गया था। आज अगर हम कहते हैं ना कि देखो ये अपने दीन के ऊपर तो अच्छे ही है ना, देखो झूठ नहीं बोलते हैं, देखो कितनी चैरिटी करते हैं, कितना अदल करते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी किताबों पे इनके ईमान लाने का और अमल करने का इजहार क्या है कि इनकी किताबों में था कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे तो तब आप उनको मान लेंगे। तो लिहाजा नबी के आने के बाद से लेके क़यामत तक के लोगों के लिए एक ही कानून है कि रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाना लाजिम है। अब नहीं कोई कह सकता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा बाईपास कर दें और दीन ले लें, ये नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि सही तरीके का ईमान लाओगे, अमल साले करोगे, कोई भी नहीं रोकेगा। और असल में यहाँ पिछली आयतों के साथ रब्त बनाएंगे तो यहूद के तस्करे के दौरान इस आयत का आना क्या बताता है कि जब उनको ये बातें समझ आ गईं तो वो सोचें कि क्या अगर हम अब ईमान लाना चाहते हैं तो क्या हमारा ईमान काबिले कबूल भी होगा कि नहीं। ऐसे जैसे आज के दौर का कोई यहूदी या नसरानी या कोई दूसरे मज़हब वाला सोचता है कि हमने तो इतनी ज़िंदगी बातिल अकायद के साथ गुजार दी तो क्या अगर आज हम मुसलमान होते हैं तो क्या हमारा ईमान कबूल होगा? तो अल्लाह ताला कहते हैं हाथों हाथ लेंगे, दिल की खुशी से तुम्हें लेंगे, बल्कि दूसरे तो एक अमल करते हैं तो उनको एक नेकी मिलती है, तुम्हें तो हर अमल की दो नेकियाँ मिलेंगी। नबी सल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो इस्लाम से पहले किसी और दीन पे था, यानी इल्हामी दीन पे था, और ऑफकोर्स यहूदियत और नसरानियत, तो कहा कि इनको अपने हर अमल का दुगना अजर मिलता है। इनको देख के तो रश्क आता है कि इनका हर अमल दुगना हो जाता है। तो लिहाजा अब कोई चीज़ उनके रास्ते की रुकावट नहीं है। अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं कि फिर तुम होगे वला खौफन अलैहिम वला हुम यहसनून, फिर बेखौफ भी हो जाओगे, बेगम भी हो जाओगे। यहाँ देखिए कि अमल सवाले की शर्त लगा दी। लिहाजा आज भी अगर कोई ये कह देता है ना कि हम मुसलमान हैं तो अब हमें जन्नत चाहिए और हमें दुनिया में भी बड़ा बनना है, तो उसके लिए अमल सवाले लाजमी है। अब अगर आप यहूद के हालात के ऊपर इस आयत को क्यास करें, वो क्या कहते थे कि वी आर चोजन पीपल, हम बस चुने हुए लोग हैं, इन पे जवाल क्यों आया? और कल उन पे आया था तो क्या आज हम पे नहीं आया हुआ? आज मुसलमानों को देखें तो आपको कोई काबिले रश्क लोग लगते हैं? कभी किसी की जुबान से आपने ये कहते सुना है कि हाय काश मैं मुसलमान होता? किसी ज्यू क्रिश्चियन या किसी बेदीन को भी पूछें कि क्या मुसलमान लफ्ज़ तुम्हारे लिए ऑनरेबल लफ्ज़ लगता है? हाल क्या है कि आज अगर दुनिया के नक्शे को देखा जाए तो बच्चे भी पूछते हैं कि अगर हम कलमा गो हैं तो हम पीछे क्यों हैं, हम पिट क्यों रहे हैं? उसकी वजह अल्लाह ने बता दी कि जिस दीन पे अमल करने से इज्जत मिलनी थी उसी दीन को तो पीछे छोड़ दिया। क्या आज मुसलमानों में भी ये गिरोह नहीं पैदा हो चुका कि जो ये सोचते हैं कि दीन पे अमल करेंगे तो बैकवर्ड हो जाओगे, जिल्लत समझते हैं दीन पे अमल करना, छोड़ दो इसको फिर मॉडर्न बनोगे? तरक्की करना क्या है? दीन को छोड़ दो। मॉडर्न बनना क्या है? इस्लाम को छोड़ दो और हर वो काम करो जो दूसरे करते हैं। याद रखिए कि ईमान इंसान को आला मुकाम तब देता है जब उसके तकाजे भी पूरे किए जाएं। जन्नत का फैसला किसी गिरोह से नहीं होगा बल्कि हर एक के आमाल से होगा। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। हाँ, मुसलमान होने के बाद रास्ता खुल जाता है। अल्लाह ताला ने आपको एक चांस दे दिया जो अभी दूसरों को नहीं मिला। और एक शिकवा भी है ना लामा इकबाल का कि हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं हम तो मुसलमानों पर रहम करना चाहते हैं, करम करना चाहते हैं, लेकिन तुम में से कोई सवाल ही नहीं देख करने वाला। राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह देना चाहता है लेकिन हम अमल करेंगे तो मिलेगा। फिर हम जो मर्जी कहते रहें कि बर्क गिरती है बेचारे मुसलमानों पे, तो इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जब हम काम नहीं करेंगे तो फिर यही होगा। यहाँ से एक और भी बहुत ही अहम बात समझ आती है, और वो क्या कि इस्लाम के अलावा किसी और नस्बत को नहीं मानता। चले मैं आसान करने के लिए बताती हूँ। हम बाज़ दफ़ा किसी से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो पाकिस्तानी है, कहते हैं नारे लगते हैं पाकिस्तानियत के नाम पे लगते हैं, और आप पाकिस्तान में जाएंगे तो सूबों की बुनियाद पे भी लगेंगे। हम सिंधी हैं, हम पंजाबी हैं, और हम बलोची और दूसरे नाम से, ठीक है। फिर इसी तरह एक और नाम नारा लगता है हर दौर में, अरबी और अजमी का, हम अरबी लोग हैं, फलान अजमी है। इस्लाम का ये मिजाज नहीं। याद रखिएगा कि इस्लाम ने ऐसी हर तंजीम को डिस्करेज किया है जिसमें लोगों को लफ्ज़ इस्लाम के अलावा किसी और यूनिट से जोड़ा जाए। मसलन किसी से मोहब्बत करें कि ये मेरी पाकिस्तानी बहन है, नहीं, ठीक है, दिल में मोहब्बत आना और बात है, उनसियत है, आपकी ज़ुबान है, आप बात करेंगे, आपका कल्चर मिलता है, आपका हल्का अहबाब पाकिस्तानियों में, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब मोहब्बतों का सिर्फ ये मेयार हो जाए कि ये पाकिस्तानियों की मस्जिद है, ये सिंधियों की मस्जिद है, ये सोमालियों की मस्जिद है, ये तुर्कों की मस्जिद है, ये इस्लाम के टुकड़े करने की बात है। अल्लाह के नबी मदीना में आए थे, एक मस्जिद बनी थी, मस्जिद नबवी नाम था उसका, ना उसको मुहाजिरों की मस्जिद का ना अंसार की मस्जिद का। और अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल से ज़ायद गुजर गए, आज भी आपको मक्का मदीना में कोई ऐसी मस्जिद नहीं मिलेगी कि जहाँ किसी के फिरके के नाम के साथ बनी होगी। कोई शामियों की मस्जिद, वहाँ एक बड़ा अरसा तुर्कों की हुकूमत रही, पूरे मुल्क में आपको कोई तुर्क मस्जिद नहीं मिलेगी। आज भी आप देखिए, कहते हैं ना एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज। हुआ क्या, ये मुसलमानों का जवाल आया कहाँ से था? ये भी शायद से ही आपको पता चल जाएगा कि जब हमने इस्लाम की नस्बतों को पीछे डाल के गिरोहों की मोहब्बत पे लोगों को जमा करना शुरू कर दिया, जब अकीदत के महवर बदल गए। पहले सबकी अकीदत ही मोहम्मद रसूलुल्लाह से, आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब इसमें गालिब आ गई किसी एक शख्सियत की मोहब्बत, तो कोई हनफी बन गया, कोई शाफई बन गया, कोई मालकी बन गया, और कोई कुछ और बन गया, किसी को वहाबी कह दिया, किसी को साबी कह दिया। इस्लाम लोगों को जमा करने का एक ही मिशन देता है कि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिला सालेहन। अब देखिए कि यह मोहम्मद और रसूलुल्लाह पर ईमान लाने की बात नहीं है, आयत में नहीं है, और इसी से लोग मुगलते में आ गए कि देखो अल्लाह ने ये कहा कि अल्लाह पे ईमान ले आओ, बस दैट्स इट, और अमल साले करते रहो। अगर आमन बिल्ला पे ना भी लेके आए ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाना, तो अमिला सालेहन के अंदर आ जाएगा, और योम आखरत पे ईमान लाएंगे ना, तो मरने के चंद घंटे के बाद ही कब्र में जो दूसरा सवाल होना है वो क्या है कि मर रसूलु का, तुम्हारा रसूल कहाँ था? कौन नबी की रिसालत को निकाल के फिर दीन पूरा करना चाहता है? आज के दौर का मारूफ फितना क्या है? इनकारे हदीस, हदीस का इनकार कर दो, ये तो बाद में लिखी गई। लोग पूछते हैं, अच्छा जी ये हुक्म कुरान का है कि हदीस का है? तो मैं कहती हूँ इससे फ़र्क क्या पड़ता है? नहीं अच्छा कुरान का फिर तो फ़र्ज़ होगा ना, और हदीस का तो फिर तो ठीक है। ये पता ही नहीं कि जिस तरह कुरान की बात किसी बात को साबित करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी है या हुज्जत है, इसी तरह हदीस भी काफ़ी है। लिहाजा इस पे बात तो आगे कहीं जाएगी, लेकिन आपका मेरा जहन क्लियर हो जाना चाहिए कि सिर्फ नामों से कुछ नहीं होता। मुसलमान असली मुसलमान होगा जब अमल सवाले करेगा, जब उसकी ज़िंदगी में दीन का रंग दिखेगा, तो फिर पता चलेगा। जब ये दीन अकबरी का नारा लगा था, तो उसी वक्त फिर 20वीं सदी में दोबारा ये फितना उठा था गांधी जी के दौर में। उन्होंने भी यही नारा लगाया था कि मुत्तहदा वतनी कौमियत, क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान में दो तीन डिफरेंट कल्चर रहते थे, सिख भी थे, मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे। तो जब कभी इनका अपना जैसे वज़ीर आज़म का खिताब होता है, तो उससे पहले कुछ आयतें कुरान की तिलावत करवाते थे, कुछ गीता पढ़ाते थे और कुछ सिखों की दूसरी किताबें पढ़ाते, कुछ गुरुज की बातें कर करा के कहते थे देखो हम सब एक हैं और देखो फिर आप करो। देखिए ये सियासत होती है, एक छोटा सा नुक्ता समझ लें, हालांकि बात लंबी हो रही है, कि जब भी किसी ने ये कहा ना कि सबको लेकर साथ चलो, अच्छी बात है, अल्लाह के नबी साथ लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने असूलों पे कुर्बानी नहीं की थी, उन्होंने शिर्क और बिदत का फ़र्क रखा था। अल्लाह के नबी के पास जो बहुत सारी फरमाइशें आती थी, उसमें एक ये भी था कि एक साल आप हमारे बुतों को पूछ लें, एक साल हम आपके खुदा को पूछ लेंगे। अच्छा एक साल नहीं पूछते तो चलो एक महीना आप पूछ लें, हम एक साल ही पूछ लेंगे। नहीं, एक हफ्ता पूछ लें, हम एक साल पूछ लेंगे, एक दफ़ा पूछ लें, एक सजदा कर दें हमारे बुत के आगे, हम आपके अल्लाह के आगे करेंगे। अल्लाह ने पूरी सूरत उतार दी थी, कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून। अकीदे पे कहीं भी आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, लेकिन जब से बीच में ये तसव्वुर आ गया ना, यानी जब दीन के ऊपर सियासत का गलबा आता है ना, तो लोग कहते हैं सबको साथ लेकर चलो, किसी को नाराज़ नहीं करना, किसी के वोट ना कम हो जाए, हमारी कुर्सी ना नीची हो जाए। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें जहाँ आपका असल दीन ही नहीं रहा, आज अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है मुसलमानों पे? वो है ही नहीं। इस्लाम हो तो उसमें मदद आएगी ना, बंदा एक रब के नाम पे उठता है ना, अल्लाह की मदद ऐसे आती है, ज़मीन भी उगलती है, आसमान भी उगलता है। आप तो बस हैरान ही रहते हैं कि हो क्या रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। आप देखिए अल्लाह मिट्टी में से तेल निकाल देता है, कभी आपने सोचा? ना वहाँ इंडस्ट्रियाँ ना कुछ, एक अल्लाह के दीन की बरकतें हैं ना। इसलिए ज़िंदगी में जहाँ आपको अल्लाह की मदद की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर इख़लास पैदा करना होगा, हर निस्बत से ऊपर उठ के अल्लाह की तरफ जुड़ना होगा। वरना आप देखिए ऐसे नारे लगाने वाले कल भी थे और आज भी थे। एक खातून थी, एक मौके पे कहीं मैं किसी महफिल में थी, इंतहाई मॉड स्कॉट लोग थे और दो लोगों की आपस में बहस हो रही थी, बकायदा नाम लेके वो दूसरी जो मॉडर्न खातून थी वो झगड़ रही थी जो ज़रा सी दीनी बात करने वाली थी। और मैं समझती हूँ कि गलती उनकी भी होती है कि जब ऐसे मौजू आप महफिलों में शुरू कर देते हैं, ये आप कुरान की क्लास में बैठे हैं तो ये बातें कर रहे हैं ना। मैं ये टॉपिक कभी किसी दर्स में नहीं छेड़ती, आज तक पिछले इतने सालों में नहीं छेड़ा, किसी को समझ नहीं आएंगी ये बातें। जब लोग शादियों में दावतों में चौर सुनो अच्छा क्या पढ़ रही हो, आपसे भी पूछें और आप जाके ये बातें वहाँ सुना देंगे ना, तो गड़बड़ होगी। तो बहरहाल वो झगड़ रही थी, नाम मैं नहीं लेना चाहती, कुछ बड़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ जो नॉन मुस्लिम्स हैं करी, नहीं आप बताएं कि क्या भला अल्लाह उसको आग में डालेगा? यानी उनके दिल से मोहब्बत टपक टपक के गिर रही थी उस शख्स की या उस शख्सियत की, ना आप मुझे ये बताएं, यानी बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि उनका अपना घर है जन्नत और उसके दरवाजे पे वो खड़ी हैं और वो झगड़ के कह रही हैं कि आप बताइए कि क्या उसको कोई जाने से रोक सकता है जन्नत में? ना तुम कहते हो हिंदू के बुरे होते हैं, तुम कहते हो फलां, हम तो किसी को नहीं कह रहे और अल्लाह ना हमें कभी तौफीक दे किसी को बुरा कहने की, लेकिन कुरान पढ़ने के बाद तो आंखें खुल जाती हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ करें कि मुसलमान होने का सिर्फ दावा ही ना हो, हर दावे की दलील चाहिए। मत सोचिए कि हम कुरान पढ़ के या दीन के ऊपर आके इस्लाम पे आ गए तो बात काफ़ी हो गई, बल्कि अल्लाह ताला ने यहाँ कोई तकाबुल के लिए बात की है, ये ईमान की तफसीलात नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं अच्छा फिर आप साबित करें कि अल्लाह के नबी का नाम इस आयत में क्यों नहीं आया, आना तो ये चाहिए था कि मन आमन बिल्लाही व आमन बे रसूल, तो उन्हें आप ये जवाब दे सकते हैं कि ये आयत ईमान की तफसीलात के लिए नहीं है। जाइए सूरह बकरा ही की आखिरी आयतें पढ़ लें, उसमें पूरी बात है बिलकुतुब ही व रसुल ही, तफसीलात वहाँ मौजूद हैं। कभी कुरान पाक की किसी एक आयत से मसला नखस करें, एक ये भी आप नसीहत याद रखिएगा सारी जिंदगी, जहां कोई बंदा आपसे कुरान की आयत का हवाला दे के झगड़े ना, तो फौरन उसे कहें कि देखिए किसी एक आयत से आप एक बड़ा मसला नहीं अखज कर सकते। क्या पूरे कुरान में कोई और आयत है जिसमें अल्लाह के नबी की रिसालत को मानने का तस्करा है? बेशुमार। कहाँ गई वो आयत अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो रसूल की इताअत करो? कहाँ गई वो आयत के वमा आताकुम रसूल फखुजूहू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, सूरह हशर की आयतें हैं, जो तुम्हें रसूल दे उसको ले लो, जिससे रसूल रोके उससे रुक जाओ। यही तीन है। तो लिहाजा आप कभी भी इस धोखे में नहीं आ सकते अगर आपने इस्लाम को सही तरह समझा। सूरह आले इमरान में इस मौजू पे बहुत बात होगी इंशाल्लाह। वहाँ क्रिश्चियनिटी, मैं महसूस करती हूँ कि सूरह बकरा में ज्यूस के साथ मतलब तकाबुल है इस्लाम का। अब मोस्टली आज की दुनिया में ज्यूस के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं है मुस्लिम्स का, लेकिन क्रिश्चियंस के साथ ज़्यादा है। तो सूरह आले इमरान तो बिल्कुल आपको खोल के रख देती है कि आज के दौर में जब ख़ास तौर पे हमें मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों के साथ मिलके रहना होता है, तो हमारे अपने अकायद तो ठीक हों। अल्लाह ताला करे इन्ना दीन इंदल्ला इस्लाम, दीन इस्लाम है अल्लाह की नज़र। व मैं यब तगी गैर अल इस्लाम ही दीना, जो इस्लाम के सिवा कोई और दीन लेके आएगा, फल युकबला मिनहू, उससे कबूल नहीं होगा। और वो रिवायत जो मैंने आपके सामने रखी कि नबी सल्लम को ना मानना तो उसका ठिकाना जहन्नुम है, ये सही मुस्लिम की रिवायत है किताबुल ईमान की, आप उसमें देख सकते हैं। बड़े बड़े नाम अगर मैं लूँ ना आपकी हिस्ट्री के, और मैंने खुद हिस्ट्री के मतलब पीरियड में उनके नाम पढ़े हुए हैं कि जिनके बारे में लोग ये बातें करते हैं कि जी आप उनको एज अ हीरोज़ मुस्लिम हीरोज़ के नाम पे पढ़ते हैं, उनके अकायद में इतना ज़ोफ़ आ चुका था। तफसीरें लिखी हुई हैं इस वक्त भी उर्दू ज़बान की कई तफसीरों के अंदर, पूरी तो ऑफ़ कोर्स गलत नहीं होगी, लेकिन जहाँ ये मौजू आएगा वहाँ गड़बड़ है। तो जब तक आपको ख़ुद ही नहीं पता ठीक क्या है गलत क्या है, तो आप कैसे उसको उससे फ़ायदा उठा सकते हैं? तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें दीन के नाम पर बिल्कुल खालिस करके दो टोक फैसला करने वाला बना दे। कुरान पढ़ने के बाद कोई यहाँ से ना ऐसा उठे कि जिसके अकायद में ज़ोफ़ हो, ना पढ़े बंदा उसकी बात तो और है, लेकिन पढ़ने के बाद अगर गोलमोल बात की जाए, खलत मलत बात की जाए, या एक छोटा सा नुक्ता और भी नोट कर लें, जो बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं बताता ना, गोल गोल बात करता है घुमा के, ये भी ठीक वे भी, ये भी समझे समथिंग इज रॉन्ग। इस्लाम दलील का दीन है, दो टोक, बदतमीजी का नहीं, गुस्से का नहीं, सख्ती का नहीं, पोलाइटनेस रहमा बैना, लेकिन बिल्कुल जैसे रात और दिन का फ़र्क है ना, वही फ़र्क कुफर और इस्लाम का है। और आपको मुझे पता होना चाहिए ताकि हम कम से कम अपने अकायद की इसलाह तो कर सकें। अब यहाँ अल्लाह ताला ने पिछली आयत में यहूद के तस्करे के बाद बीच में इसे एक आयत को लाने के बाद दोबारा फिर हमें यहूद ही की हिस्ट्री की तरफ माइल कर दिया, जो हम पिछले रुकू से पढ़ते आ रहे हैं। आयत नंबर 63 को देखते हैं। व इस अखस नामी साकुम, और जब हमने तुमसे पुख्ता वादा लिया, किसने लिया? अल्लाह ताला ने। किससे लिया? यहूद मदीना के अबाउ अजदाद से। वरफाना फौकुम तूर, और हमने तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ को बुलंद कर दिया। और क्या कहा? ये जो अगला लफ्ज़ है ना खुजू, इससे पहले इन्वर्टेड कॉमा लगाएं। फ़र्क समझते हैं ब्रैकेट का और इन्वर्टेड कॉमा का? इन्वर्टेड कॉमा इंग्लिश में कहाँ होता है? जो दो छोटे से कॉमे डाल दिए जाते हैं, किसी का कलाम होता है वो, जैसे अगर कोई किसी की बात पेश करता है तो उसके इधर भी कॉमा लगा देता है उधर भी। ये जो लफ्ज़ है ना, ये अल्लाह सुबहाना तआला के अल्फाज हैं जो उनको कहे थे खुजू। अब देखिए कि इस आयत को अल्लाह ताला ने वो लफ्ज़ भी कोट किए हैं जो यहूद को दिए थे, तौरात में दिए थे ऑफ कोर्स। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि तौरात और जबूर पढ़ें या इंजील पढ़ें, तो ये आयतें कुरान पाक में जो हैं ये आपको उसी की सदाकत की आ रही हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब हमने तुमसे वादा लिया था, यानी यहूद, हमने तुमसे वादा लिया था, क्या? वरफा न फोक कुमतूर, और तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ को खड़ा कर दिया था। और क्या कहा था? खुजू मा आतई ना कुम बिकुवा, पकड़ लो जो हमने तुमको दिया कुव्वत के साथ, पकड़ो इस हुक्म को जो हमने तुमको दिया कुव्वत के साथ। वस्कुरु मा फी ही, और नसीहत पकड़ो जो इसमें है, उससे याद रखो उसको जो इसमें है। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, बचो ताकि तुम परहेज करो। ये जो लफ्ज़ है ना हुजू, पकड़ो, मा आतई नाकुम, ये क्या है? इसके नीचे एक डाउन एरो खींचिए। और जो हमने दिया क्या था वो? तौरात, 10 कमांडमेंट्स, अहकाम अशरा जो यहूद को दिए गए, और सूरत माईदा की एक आयत में वो पूरे 10 अहकाम तफसील से भी मौजूद हैं। हुआ क्या था इस आयत को अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर तौरात मिली, तो आप वापस आए, पीछे वो जो कौम बछड़ा बना चुकी थी, खैर वो मामला रफा दफा हुआ, कुछ लोग कत्ल हुए, कुछ खत्म हुए, उसके बाद कहा कि अच्छा भाई लाओ दिखाओ क्या लेके आए हैं। जो ही मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात के अहकामात उनको दिखाए तो यहूद की तो चीखें निकल गई, कहेंगे हाय इतनी मुश्किल, हम तो सोच रहे थे थोड़ी आसान होगी। जैसे हो सकता है आप में से कुछ को कोर्स मुश्किल लग रहा हो, कि हमने तो सोचा था बड़ा आसान होगा, ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, लफ्जी तर्जमे की वजह से, अल्फाज की वजाहत की वजह से। हाँ कभी कभी ऐसा होता है। तो अब हुआ क्या कि जब अहकाम पता चले तो कहने लगे ये तो बड़े मुश्किल हैं, और हमें क्या पता कि आपने खुद बना दिए होंगे, आपकी तो तबीयत में बड़ा गुस्सा है। आपको पता है कि मूसा अलैहिम थोड़े गुस्से वाले थे, मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे ये हमें नहीं यकीन आ रहा कि आपने किया है, हम तो जाके खुद देखेंगे। कहा अल्लाह के बंदोश क्या कह रहे हो, अल्लाह के नबी पे शक करते हो, फिर भी गुस्सा ना किया, कहा चलो लाओ। 70 लोगों को साथ लिया, उनके आलिम थे बड़े बड़े, उनके खिबर थे, कहा चलो इनकी मौजूदगी में अहकामात उतरेंगे तो इनको यकीन आएगा। उन्होंने वहां जाके खैर से मुतालबा कर दिया कि नहीं जी नहीं नहीं हम तो अल्लाह को खुल्लम खुल्ला देखना चाहते हैं, पीछे हम पढ़ चुके हैं ये सारा वाक्या। इस बात पे अल्लाह ताला ने उनको फौत कर दिया, बिजली गिरी उसकी वजह से फौत हुए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद वो जिंदा कर दिए गए। खैर जैसे जैसे करके तौरात आई, अब उनके लोगों ने भी जान ली जो बड़े आलिम थे कि भाई वाकई अल्लाह ताला की तरफ से आई है। कहा अच्छा भाई अब सुनाइए जरा इसमें क्या है। जूं ही वह अहकाम सुनाए तो कहेंगे हाय ये तो बड़ी मुश्किल है, ये तो काबिल अमल ही नहीं है। है बस इस बात पे अल्लाह ताला को गुस्सा आया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि कोहे तूर का एक टुकड़ा उठा के इनके सर पे मुअल्लक कर दो, कि मानते हो कि नहीं मानते, खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वा, पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते। कुव्वत से पकड़ने से मुराद है कि शिद्दत से अमल करो, इस दीन को मानो, वस्कुरु मा फी, इसको चूमने चाटने की बजाय इससे नसीहत लो, ये नसीहत की किताब है। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ, ताकि तुम बच जाओ। जूं ही इन्होंने देखा कि कोहे तूर सर पे खड़ा है, फौरन सजदे में चले गए। आज भी यहूद के मजहब में ये सजदा मौजूद है, इसको रफाए अजाब का सजदा कहते हैं। रफा कहते हैं हटाना, यानी अजाब को हटाने का सजदा। और इसमें करते क्या हैं कि एक आंख से ऊपर देखते हैं, खौफ क्या था कि ऊपर से तूर ना गिरे। कुछ ने फिर तावील की, नहीं नहीं कोहे तूर तो नहीं था, डांट थी यानी खड़ा नहीं किया गया था। जो अल्लाह ताला आसमान को खड़ा कर सकता है, क्या पहाड़ के एक टुकड़े को खड़ा नहीं कर सकता? मौजज़ात का इनकार करने वालों ने इन आयत की बहुत तावील की, तो अल्लाह ताला ने उसी का तذکرہ किया कि देखो इस किताब पे गौर करो, अमल करो, और देखो अल्लाह ने वादा लिया है। अल्लाह से वादा करना कोई छोटी बात नहीं है, एक तरफ अल्लाह की ज़ात और दूसरी तरफ एक आम इंसान जिसके पास कुछ भी अथॉरिटी नहीं है। लेकिन हुआ क्या, कुछ अरसा तो बात हुई, सुम्मा तवल्लई तुम मिन बादी ज़ालिक, वो जब तक वो अजाब आने का खौफ रहा मानते रहे, लेकिन ज़रा सा वक्त आगे गया तो फिर भूल गए। फलौला फ़तलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहू, और अगर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत तुम पर ना होती, लकुन्तुम मिनल खासिरीन, तुम नुकसान पाने वालों में से हो जाते। यानी थोड़ा सा अरसा इस वाक़े को गुजर गया तो फ़ौरन भूल गए। क्या आज भी ऐसा होता है, कोई मुश्किल आती है, कोई अजाब आता है, अजाब से मुराद ये कि कोई परेशानी आती है तो किताब के साथ ताल्लुक बढ़ने लगता है, और जूं ही वो मुश्किल टल जाती है हम दोबारा उसी तरफ पलटने लगते हैं। दो आयतों के अंदर एक दो बातें हैं जिसपे हम थोड़ा सा बात कर सकते हैं, कि पहली बात ये है कि अल्लाह ताला ने किताब इनको दी थी अमल के लिए। हम सब के लिए भी ये अमल की बात है कि अल्लाह की तरफ से जब कोई किताब आती है ना, तो वो किस लिए होती है, कि उसको पकड़ा जाए मजबूती के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को भी इस बात की नसीहत की थी कि वो दीन जो मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ, उसको कुचलियों से पकड़ लो। ये कुचलियाँ साइड के दांत होते हैं, दाढ़ें जो होती है ना, इधर मजबूती होती है, यानी आपने इशारा दिया कि इस दीन को मजबूती से पकड़ लो। दांतों से पकड़ोगे तो हो सकता है गिर जाए, साइड के दांतों से पकड़ो यानी इसको मुहकम पकड़ो। आगे भी आप पढ़ेंगे सूरह बकरा में आएगा, फ़कदिस्तमसका बिलौरवतिल वुस्का, अल्लाह के कड़े को मजबूती से पकड़ो। तो किताब का मकसद क्या होता है, कि उससे नसीहत ली जाए। क्या आज ये मकासद पूरे हो रहे हैं? अब देखिए कि हर एक लेसन के अंदर कहीं ना कहीं इस बात का इशारा मिल जाता है कि किताब पे अमल करो। तो जो लोग बेचारे किताब को समझ ही नहीं पाते, या वो सुनने का मौका ही नहीं पाते, क्या फिर वो इस चीज़ को देख रहे हैं? नहीं देख रहे ना। फिर दूसरी चीज़ इन आयतों से एक एतराज़ हो सकता है, और वो क्या है कि एक तरफ तो दीन में इकराह जबर नहीं है, आयतुल कुर्सी के फौरन बाद की आयतों में आता है कि ला इकराह फिद दीन कद तबैना रुश्द मिनल गई। कि दीन में जबर नहीं है, हकी हिदायत गुमराही से बिल्कुल वाज़े है। यानी किसी को ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे मुसलमान नहीं कर सकते, हिदायत भी वाज़े है और गुमराही भी वाज़े है। जिसको आना है वो दलील से आए। तो सवाल पैदा होता है कि एक तरफ तो ये है कि दीन के बारे में, दीन में कोई जबर नहीं, और दूसरी तरफ यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि जबरन अतात की जा रही है सर पे पहाड़ खड़ा करके। तो इसका जवाब क्या है कि दीन में लाने के लिए तो कोई जबर नहीं है। आप किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं कर सकते कि गन पॉइंट पे क्या मुसलमान होते हो कि नहीं। लेकिन जब कोई बंदा अपनी खुशी से इस्लाम कबूल कर लेता है, फिर अगर इस्लाम की किसी बात को नहीं मानता, तो हुक्मरान जो अपने वक्त का हाकिम है, फिर वो ज़बरदस्ती अमल करा सकता है। मसलन नमाज है, रोज़ा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दौर में उन लोगों से जिहाद डिक्लेयर कर दिया था जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था। नमाज का तो लोग तसव्वुर ही नहीं करते थे उस दौर में कि ना पढ़े, लेकिन ज़कात के मुनकरों से जिहाद हुआ था, या कम अज़ कम उसके हालात बन गए थे। तो इससे क्या पता चला कि ये जो इताअत करवाई गई थी, ये कोई जबरी नहीं थी, ये तो करनी पड़ेगी। देखिए, एक दफ़ा आप कहते हैं ना कि हम रूल्स को फॉलो करेंगे, आपको किसी ने मजबूर नहीं किया कि आप यहाँ आके सीखें, राइट? लेकिन अब एक दफ़ा आप आ गए हैं तो फिर आपको सारे रूल्स मानने पड़ेंगे ना। तो इसमें कोई जबर नहीं, इकराह नहीं है। इसीलिए फिर इस्लाम में मुर्तद की सज़ा कत्ल है। हाँ, काफिर की सज़ा कत्ल नहीं है। ये नहीं कहा कि सारे काफिरों को मार दो। हाँ, इस्लाम की तरफ आके कोई पलट जाता है तो उसको मार दो। क्यों? कि उसमें जर्म्स हैं। वो इस्लाम का इतना नेगेटिव रूप पेश करेगा लोगों के सामने, अपनी सच्चाई तो पेश करेगा ही ना। नतीजा क्या होगा कि लोग उसकी वजह से दीन से दूर होंगे।